तारीख 25 अक्टूबर दिन मंगलवार। नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। पाकिस्तान के कोयटा में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आत्मघाती हमला, कम से कम 50 की मौत।
ये बेसिकली लश्कर जंग भी अल आलमी के दहशत गर्द थे और इनको इंस्ट्रक्शन जो इनके बारे में जो बातचीत कर रहे थे वो अफगानिस्तान में बैठ के कर रहे थे।
उत्तर प्रदेश में यादव परिवार में सुलह सफाई की सारी कोशिशें विफल, क्या होगा आगे?
हमेशा इतिहास रहा है कि जनता जो सनराइज वाला होता है उसकी तरफ जाती है। अखिलेश 2017 में मुख्यमंत्री रहे या न रहे, ये 2017 की नहीं 2022, 2027 और 2032 की लड़ाई अखिलेश के सामने अभी है।
झारखंड में क्या कर रहे हैं सेना के एक रिटायर्ड कर्नल, सुनेंगे खास रिपोर्ट और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा शहर में कल रात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर चरमपंथियों ने हमला किया, जिसमें ट्रेनिंग ले रहे 50 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई है। इस हमले में शामिल 3 हमलावरों की भी मौत हो गई है। बलूचिस्तान के गृह मंत्री सरफराज बुगटी ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि चरमपंथी पुलिस जवानों के हॉस्टल में घुस गए थे और पुलिस के जवानों को बंधक बना लिया गया था। कई जवान इस हमले में घायल भी हुए हैं। 4 घंटों तक चले ऑपरेशन में पुलिस, फ्रंटियर कॉप्स और चरमपंथी विरोधी दस्ते के अधिकारी शामिल हुए थे। सरफराज बुगटी ने बताया कि ये चरमपंथी आत्मघाती हमलावर थे और हमलावरों का संबंध प्रतिबंधित गुट लश्करे जांगवी से बताया जा रहा है। फ्रांस के आंतरिक मंत्री बर्नार्ड कस्टम ने कहा है कि कैले शहर में जंगल नाम के शरणार्थी कैंप से 1/3 लोगों को हटाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। शरणार्थी कैंप को खाली कराने के अभियान के पहले दिन प्रवासियों को हटाकर फ्रांस के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है, जहां उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। बर्नार्ड कस्टम ने ये जानकारी दी।
Ce soir, 2318 migrants ont été mis à l'abri.
आज 2318 प्रवासियों को घर दिए जा रहे हैं। 1918 वयस्कों को कैले से 45 बसों में फ्रांस के 11 अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। 400 बच्चों को भी अस्थायी केंद्रों में भेजा गया है, जहां पहले से ही 200 बच्चे रह रहे हैं। वो उनके साथ अपने मामले पर विचार किए जाने की बारी का इंतजार करेंगे। यहां 600 ऐसे बच्चे हैं जो अकेले हैं और ये सुरक्षित हैं। बर्नार्ड कज़नव के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वेनेजुएला की डगमगाती अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संकट के बीच सोशलिस्ट सरकार और विपक्ष के बीच रविवार को बातचीत होगी। मार्गरीटा द्वीप पर होने वाली बातचीत में वेटिकन और स्थानीय समूह UNASUR मध्यस्थता करेंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और ईसाई धर्मगुरु पोप के बीच बातचीत के बाद ये घोषणा की गई है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो को हटाने के लिए जनमत संग्रह को निलंबित किए जाने के बाद से काफी राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के सुकमा, बस्तर और दंतेवाड़ा के पुलिस जवानों ने बस्तर संभाग के कई जिला मुख्यालयों पर सामाजिक और राजनीतिक दलों के लोगों के पुतले जलाए, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। पुलिस के जवानों ने सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश, बेला भाटिया, हिमांशु कुमार, मालिनी सुब्रमण्यम और बस्तर के पूर्व विधायक और आदिवासी महासभा के महासचिव मनीष कुंजाम के पुतले जलाए, जिसके बाद विपक्ष ने इसे असंवैधानिक कदम बताया है। बीबीसी समाचार।
अभिवादन स्वीकार कीजिए इकबाल अहमद का, आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का कार्यक्रम नमस्कार भारत। आज अक्टूबर की 25 तारीख और दिन मंगलवार। कार्यक्रम की शुरुआत पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के शहर क्वेटा में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हुए चरमपंथी हमले में कम से कम 50 जवान मारे गए हैं और 100 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं। हमला पाकिस्तान के स्थानीय समयानुसार कल रात के करीब 10 बजे हुआ, यानी जिस वक्त भारत में करीब 10:30 बज रहे थे। हमला 3 आत्मघाती हमलावरों ने किया था। 2 ने खुद को उड़ा लिया था, जबकि 1 को सुरक्षा कर्मियों ने मार दिया। इस बारे में और जानकारी देते हुए पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी फ्रंटियर कोर के IG शेर अफगन ने पत्रकारों को बताया,
रात को 11:10 पर हमें इत्तला मिली कि پولیس ٹریننگ سینٹر میں کوئی فائرنگ کی آواز آ رہی ہے. تو امیجیٹلی فرنٹیئر کور نے اپنی کیو آر ایفس کو موبلائز کیا اور وہ یہاں پہ پہنچی اور ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں ریکروٹس جو ہیں انہیں ہاسٹیج کیا گیا ہے اور اندر ہمیں اس وقت تعداد کا صحیح نہیں پتا تھا کہ کتنے ہیں. بعد میں جب ہم نے کمیونیکیشن ان کا پک کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اندر تین دہشت گرد ہیں اور تینوں سیوسائڈرز ہیں. یہ بیسیکلی لشکر جنگ بھی العالمی کے دہشت گرد تھے اور ان کو انسٹرکشن جو ان کے بارے میں جو بات چیت کر رہے تھے وہ افغانستان میں بیٹھ کے کر رہے تھے.
یہ تھے پاکستانی سرکشا ایجنسی فرنٹیئر کور کے آئی جی شیر افغان. اس سے پہلے ٹریننگ سینٹر میں پرشکشن لے رہے ایک کیڈٹ نے اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا
کہ میں تین چار دہشت گرد تھے, وہ آ گئے ڈائریکٹ بیرک میں گھس گئے, وہ ڈائریکٹ پیر کرنے لگے. ہم تو چلا چلا کر ہم اپنے بیرک میں گھس گئے, کچھ بیرک میں ہم گھس گئے, پھر ہم اوپر چلے گئے اوپر ہاسٹل کی طرف, پھر اپنے جان کی بچا کر آ کر ہم ادھر سے.
کتنے لوگ ہیں وہاں پر ابھی بیرکس میں آپ کے یا اس پورے ہاسٹل میں کتنے لوگ ہیں؟
تقریباً دس یا بارہ اتنے ہی ہوں گے.
اچھا آپ یہ بتائیں کہ حملہ آوروں کی تعداد کیسی تھی, ان کا حلیہ کیسا تھا, کس طرح کے نظر آ رہے تھے وہ؟
یہ سر پوشاک میں تھے, پوشاک میں تھے آ گئے تھے.
یہ تھے ٹریننگ سینٹر کے ایک کیڈٹ. اور اس بارے میں تازہ جانکاری لینے کے لیے سیدھے چلتے ہیں کوئٹہ, جہاں موجود ہے بی بی سی سنواداتا محمد کاظم. محمد کاظم, یہ بتائیں کہ آپریشن تو ختم ہو چکا ہے, مرنے والوں کی تعداد اب تک کی اطلاع کے مطابق 50 ہیں, کیا اس میں کچھ اور اضافہ ہوا ہے؟
جی بالکل, اس میں اضافہ ہوا ہے اور یہ اب کوئی 54 کے قریب لاشیں جو ہے نا سیل اسپتال کوئٹہ میں منتقل کی گئی ہیں, تو اس میں مزید بھی اضافے کا امکان ہے. اور اس میں جو زخمی ہوئے ہیں لوگ وہ 100 سے زائد ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے جو بلوچستان کے محکمہ صحت کے سیکٹری ہیں نور الحق بلوچ, انہوں نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا تھا اسپتال میں کہ 85 جو زخمی ہیں ان کو سیول اسپتال کوئٹہ میں منتقل کیا گیا ہے, جبکہ کوئی 25 سے زائد ایسے ہیں انہیں بولا میڈیکل کمپلیکس اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے.
جی
تو ابھی تک جو وہاں جو وزیر داخلہ ہیں حکومت بلوچستان کے, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو اتمی جو سرچ آپریشن ہے اس کو صبح کی روشنی تک جو ہے نا مکمل کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ 99% مکمل کیا جا چکا ہے, لیکن 1% اب بھی اس لیے باقی ہے کہ اب جو اس علاقے میں اندھیرا ہے اور صبح ہی جو ہے نا مکمل طور پر یہ بتایا جا سکے گا کہ اس میں کتنے لوگ جو ہے نا جو ایکچوئل ان کی تعداد کتنی ہے.
جی
پولیس جو کیڈٹس تھے ان کی جو ہے نا ہلاک ہونے والوں کی.
جی محمد کاظم, یہ بتائیں کہ جو تین آتم گھاتی خودکش حملہ تھے ان کی تعداد اب تو سرکشا کرمی آئی جی صاحب نے بھی اور سب نے یہ کنفرم کر دی ہے کہ صرف تین لوگ تھے, تو پولیس ٹریننگ سینٹر میں تین لوگ گھس کر 50 سے زائد لوگوں کو مار دیں, یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی. وہاں تو ہتھیار بھی ہوتے ہیں, وہ خود پولیس کی ٹریننگ لے رہے تھے, تو کیا ان کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں ہو سکی؟
جی بنیادی طور پر یہ جو علاقہ ہے پولیس ٹریننگ کالج کا, یہ کوئٹہ شہر کا نوائی علاقہ ہے. شہر کے اندر تو سیکورٹی کی صورتحال اچھی خاصی مضبوط ہے اور یہ نوائی علاقہ ہے اور اس کی قریب کوئی آبادی بھی نہیں ہے, بہت زیادہ مطلب گنجان آبادی نہیں ہے اور اس کے قریب کچھ پہاڑی علاقے بھی ہیں, تو اس کا جو ہے نا انہوں نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے کہ یہ ایک ویران علاقے میں ہے.
جی
اور چونکہ ایک بہت بڑے علاقے پر یہ پولیس ٹریننگ کالج محیط ہے, تو اس کا جو ہے نا یہ جو حملہور ہے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. تام یہ جو میڈیا کے نمائندے تھے انہوں نے وزیر داخلہ سے یہ پوچھا کہ بظاہر تو یہ سیکورٹی لیپس ہے اور یہ سیکورٹی کی ناکامی ہے, انہوں نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے جو عقبی علاقہ ہے پولیس ٹریننگ کالج کا, اس کا جو वॉच टावर है उस पे संतरी ने इनका भरपूर मुकाबला किया, और उनके मारे जाने के बाद ये जो तीन हमलावर है वो दीवार पलांग कर कॉलेज के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं। तमाम उन्होंने कहा कि ये इस बात की जो है ना तहकीकात की जाएगी कि अगर इस हवाले से कोई सिक्योरिटी लैप्स था तो इस बारे में जो है ना कोई इसको देखा जाएगा और इस बारे में जो है ना तहकीकात की जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा हमला है और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना जो पुलिस कैडेट्स हैं जो ज़ेर तरबियत पुलिस एहलकार है उनकी एक बड़ी तादाद की जो है ना हलाकत हुई है और बड़ी तादाद में वो लोग जख्मी हुए हैं। तो ये जो है ना गुज़िश्ता एक डेढ़ महीने के दौरान ये क्वेटा शहर के अंदर दूसरा बड़ा खुदकुश हमला है, और इससे कबल 8 अगस्त को सिविल अस्पताल क्वेटा में भी वकीलों पर इस तरह का एक बहुत बड़ा हमला हुआ था जिसमें 76 लोग हलाक हुए थे और उनमें जो है ना 56 वकील शामिल थे।
जी बहुत शुक्रिया
जो है ना इस तरह।
जी माफ़ करिएगा मोहम्मद काजी, हमारे पास वक्त नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी का, बहुत तफसीली जानकारी दी आपने।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और अब बात भारत के उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी में पिछले कई दिनों से चल रहा राजनीतिक संकट सोमवार को अपने चरम पर था। मुलायम, अखिलेश और शिवपाल एक मंच पर दिखे जरूर, लेकिन कार्यक्रम के दौरान, उससे पहले और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उससे यही पता लगा कि तीनों के बीच सुलह की अब शायद कोई गुंजाइश नहीं बची है। वहीं देर शाम पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह के बीमार होने की खबर के बाद तीनों नेताओं के मुलायम के घर पर एक और मुलाकात हुई, लेकिन उसमें कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। अब सभी एक ही सवाल कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
सोमवार को समाजवादी पार्टी की मेगा बैठक में गिले शिकवे दूर भले ही न हुए हो, लेकिन गिले शिकवे सुने और सुनाए खूब गए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुलकर भड़ास निकाली और सारे विवाद की जड़ में सीधे तौर पर अमर सिंह को बताया। अखिलेश यादव ने उन गड़े मुर्दों को भी उखाड़ा जो पिछले दिनों इस विवाद के मूल में थे।
आपने कहा दीपक सिंगल को बना दो, मैंने कहा दीपक सिंगल बन जाएगा मुख्य सचिव। मैं इस बात को जानता था मुख्य सचिव का हटाने का मतलब क्या होता है, और जब मैंने आपने हटाने का फैसला किया मैंने खुद फोन करवाया दीपक सिंगल को। आपने कहा दीपक सिंगल को दोबारा पोस्ट कर दो। मैंने कहा नेताजी अभी मैंने राहुल होता है बना दिया है, 10 दिन बाद में दीपक सिंगल को दोबारा बना दूंगा। बस यहीं पर नेताजी आपने बहुत कुछ कहा था उस दिन फोन पर, जिस दिन 13 तारीख को आज चाचा ने इस्तीफा देने की बात कही मैनपुरी को, 14 में कहा 15 तारीख को आपने कहा कि ऐसी तैसी हो जाएगी। मैं नेताजी यही समझता था कि आप जो कह रहे हो वो आप दिल से नहीं कह रहे हो। मैं यही समझता रहा कि वही आपने जो कह दिया मैं नहीं मान, मैं उसको ऐसे टाल देता था बात को कि नेताजी हैं, पिताजी हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी पार्टी है वो कह सकते हैं। लेकिन उस दिन जो कुछ आपने कहा मुझे बहुत दुख हुआ था उस दिन।
वही इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर नारेबाजी हुई। यही नहीं, बैठक शुरू होने से पहले ही अखिलेश और शिवपाल के समर्थकों में मारपीट तक हुई। नतीजा ये हुआ कि पार्टी के सभी अहम नेताओं के घरों के बाहर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। वहीं देर शाम 2 दिन पहले ही पार्टी से निकाले गए रामगोपाल यादव ने भी शिवपाल और अमर सिंह पर जमकर प्रहार किया।
देखिए हमारे ऊपर इस तरह के घटिया अगर इल्जाम लगेंगे तो वहाँ तो संतुलित रहा व्यवहार लोगों का, फिर भी अगर पब्लिक मीटिंग में लगे तो पब्लिक लोगों को मारेगी।
बैठक में मुलायम सिंह यादव ने भी अखिलेश यादव को खूब सुनाया, शिवपाल और अमर सिंह की तारीफों के पुल बांधे और ये साबित करने की कोशिश की कि इन दोनों से उन्हें कोई दूर नहीं कर सकता, खुद उनके बेटे अखिलेश यादव भी नहीं। इस बीच पार्टी नेताओं को अभी भी उम्मीद है कि मतभेदों में कमी आएगी और समाधान हो जाएगा। पार्टी प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता अशोक वाजपेयी कहते हैं,
देखिए बहुत संवेदनशील रिश्ता है पिता पुत्र का, अब इसमें बारे में ये सब कहने का या कमेंट करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। वो बड़े हैं, कभी भी नाराज हो सकते हैं, कुछ भी होते हैं, लेकिन बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब आपस में सद्भाव है, सम्मान है, समाधान उसका हो जाएगा, इसी अपेक्षा है।
वही बैठक के बाद देर शाम मुलायम सिंह के बीमार होने की भी खबर आई। ये सब तनाव के कारण बताया जा रहा है और डॉक्टरों ने उन्हें सिर्फ आराम करने की सलाह दी है। वहीं पार्टी नेता विवाद सुलझाने और सबके एक हो जाने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में फिलहाल जो चर्चाएं चल रही हैं उनसे नहीं लगता कि पार्टी और परिवार के अपने लोगों के दिल मिल पाएंगे। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
तो अब आगे क्या होगा, यही सवाल पूछा हमारे साथी वात्सल राय ने वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह से।
2012 में मुलायम ने अपनी राजनीतिक विरासत अखिलेश को सौंप दी थी। ये कवच और कुंडल नहीं है कि जब चाहेंगे मुलायम वापस ले लेंगे। जनता अखिलेश यादव में ही मुलायम सिंह को देखती है, मेजोरिटी की बात मैं कर रहा हूँ। तो बचा कुछ नहीं है अखिलेश के अलावा। हकीकत यह है, ये कालिदास मार के झगड़े, जैसे आप 69 में याद कीजिए, इंडिकेट और सिंडिकेट जब बना था, अंत में क्या हुआ, इंदिरा गांधी अकेली निकली थी। आज कोई जानता भी नहीं है कि वो कौन सा कांग्रेस संगठन कहाँ थी, क्या था, खत्म हो गया। वो तो उस तने के सूखे छिलके की तरह होता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता तना छोड़ने के बाद। ये जो भी ड्रामा चल रहा है, इमोशनल ड्रामा, इमोशनल ब्लैकमेल, पारिवारिक है, और ये होना ही था। और मैं बताऊं, जो लोग लायबिलिटी बन जाते हैं एक लंबे दौर के बाद राजनीति में, हमेशा चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे BJP रही हो, अब ये समाजवादी पार्टी है, जो लोग पुराने दौर के होते हैं, जो सूर्यास्त के समय की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, और जब भी कोई बंदा सूर्योदय के समय की, सनराइज के समय की लड़ाई लड़ रहा होता है, हमेशा इतिहास रहा है कि जनता जो सनराइज वाला होता है उसकी तरफ जाती है, चाहे वो श्रीमती गांधी रही हो, चाहे 2012 से लेकर 14 के बीच नरेंद्र मोदी रहे हों। ये हर पार्टी में होता है, वही समाजवादी पार्टी में भी होगा। अखिलेश 2017 में मुख्यमंत्री रहे या न रहे, ये 2017 की नहीं, 2022, 2027 और 2032 की लड़ाई अखिलेश के सामने अभी है।
और जो लोग उंगली पकड़ के चल रहे हैं मुलायम सिंह यादव की, शिवपाल, अमर सिंह, जिनके प्रति मुलायम सिंह यादव ने अपना लगाव भी जाहिर किया, उनकी क्या स्थिति देखते हैं आप?
वोटर को अखिलेश में मुलायम सिंह दिखता है, शिवपाल में मुलायम सिंह नहीं दिखते हैं उसको। वो मुलायम सिंह चाहे पोस्टर के बतौर उनके सामने जा करके भी चले जाए, तो भी वो वोटर जो है मान चुका है कि मुलायम का जो कुछ भी विरासत है, जो उनकी पहचान है, वो अखिलेश में है। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को मुलायम सिंह भी अच्छी तरह से जानते हैं।
चुनावी साल में ये जो झगड़ा हुआ है पूरा, इससे कितना पार्टी को नुकसान हुआ है?
इससे कई लोग नुकसान कह रहे हैं, लेकिन आज के सारे इस दिन के घटनाक्रम को अगर आप देखिए तो अखिलेश की शख्सियत बढ़ी है, शिवपाल की घटी है। जब चाचा भतीजे से माइक छीन रहा है, भतीजा चाचा से माइक नहीं छीन रहा है। हमेशा सहानुभूति कमजोर के प्रति होती है, उनके साथ नहीं होती है जहां 10 लोग मिलकर के एक आदमी पर वार कर रहे हैं। मुलायम मैं तो ये नहीं कहूंगा क्या है, अंदर की बात मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी स्थिति भीष्म पितामह की तरह है कि मैं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ।
आपको क्या लगता है कि इस झगड़े का क्या भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को कोई फायदा मिल सकता है?
इस झगड़े का सबसे ज्यादा फायदा अखिलेश को मिलेगा, बाकी किस पार्टी को क्या मिलेगा अभी देखिए, 10 सेटल होने दीजिए। इस बार उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद पहली बार ये चुनाव ऐसा हो रहा है जहां 3.5 पार्टियां लड़ रही, इसके पहले कभी नहीं। चाहे 6 पार्टियां खड़ी होती थी लेकिन पता होता था SP है, BSP है, उसके पहले का दौर होता था कांग्रेस है और पीजेंट्री पार्टी है, चाहे चौधरी चरण सिंह ग्रुप में रहे हों, फाइट 2 के बीच होती, BJP और कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर की पार्टी थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, BJP भी फाइट में है, SP भी फाइट में है, BSP भी फाइट में है। कुछ तक कांग्रेस खेल बिगाड़ने की ताकत उसके पास भी हो सकती है, क्योंकि जब 3 पार्टियां लड़ती हैं सब, तो उसमें 3.5 जो आधी पार्टी होती है, कई बार उसका महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है, कितनी सीटें ले आती है। अगर कांग्रेस 40 से ऊपर सीट लाती है तो कांग्रेस विल बी द किंग मेकर इन उत्तर प्रदेश, आई टेल यू। अभी जब इस पार्टी की जो शक्ल होती है, अखिलेश क्या होते हैं, दो ही चीज है कि किसके चेहरे पर चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा और कौन टिकट बांटेगा। ये दो चीजें फाइनल हो जाएंगी 10-15 दिनों के अंदर अंदर। जो मेरा मानना है, अल्टीमेटली ये अखिलेश ही होंगे, तो ये फायदा और नुकसान फिर उसके बाद देखा जाएगा कि किसका होता है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल उत्तर प्रदेश में थे, जहां उन्होंने कई रैलियां की। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी मोदी की इन रैलियों से राजनीतिक संदेश के इंतजार में थी। मोदी ने पार्टी की उम्मीद के मुताबिक अपनी सभाओं में सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर 3 तलाक तक के मुद्दे को उठाया। एक रिपोर्ट सुनिए प्रभात पांडे से।
करीब 5 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को ऊर्जा गंगा समेत कई नई योजनाओं की सौगात दी। मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तैयारियों का भी ख्याल रखा। पार्टी समर्थकों ने मोदी के दौरे से पहले पूरे शहर को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बधाई देने वाले होर्डिंग और पोस्टरों से पाट दिया था। मोदी ने सीधे तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र नहीं किया, लेकिन सेना के जवानों को दिवाली के मौके पर शुभकामना भेजने की अपील करते हुए उन्होंने इस मुद्दे को छूने की कोशिश की।
जब किसी माँ का लाल सीमा पर तैनात होकर के हम लोगों के सुख चैन के लिए अपने आप को खपा देता है, और इसलिए छोटी दिवाली मना करके देश को आपने दिशा दी। मैं हिंदुस्तान भर के नागरिकों को काशी की धरती से आवाहन करता हूं, इस दिवाली में हम भी हमारे सेना के जवानों को दीपावली का संदेश भेज करके उनके प्रति हमारे लगाव का एहसास कराना चाहिए।
वहीं वाराणसी से पहले प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड के महोबा में थे। मोदी ने महोबा की रैली में तीन तलाक के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि धर्म के मुद्दे पर किसी महिला के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।
इस देश में मुस्लिम बहनों को भी तीन तलाक कह करके बर्बाद करने वाला लोगों को भी आज के युग में बर्बाद करने का मौका नहीं दिया जा सकता। इन माता और बहनों की रक्षा होनी चाहिए और इसलिए हम काम कर रहे हैं।
कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के विषय किसी रैली में तय नहीं होते हैं। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने कहा,
ये जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में बातचीत करके आम सहमति से उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं का अधिकार मिलना चाहिए। केवल तीन तलाक से ही उनके साथ हकतल्फी नहीं होती है, बल्कि दूसरे भी अन्य है जो बगैर तलाक के भी अगर अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं तो वो भी एक महिलाओं की हकतल्फी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने महोबा की रैली में उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी में जारी झगड़े का जिक्र करते हुए उस पर निशाना साधा। वहीं बहुजन समाज पार्टी को भी निशाने पर लिया।
एक तरफ वो लोग हैं जिनको परिवार बचाने की चिंता है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार से गद्दी पर पहुंच जाना है, कुर्सी पकड़नी है। आप मुझे बताइए, आज जो उत्तर प्रदेश की दो पार्टियां हैं सपा और बसपा, इनमें वो मजा है क्या इन माफियाओं से भिड़ने का जी?
उधर समाजवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात नहीं करना चाहती, ऐसे मुद्दे उठाने से उसे चुनाव में कोई लाभ नहीं होने वाला।
ये थे प्रभात पांडे, और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त हो गया है। हरिता तमाम अखबारों के साथ मौजूद हैं। जी बताएं हरिता।
जी, जैसे कि प्रधानमंत्री भी बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री का ही बयान जो है वो सारे ही अखबारों की सुर्खियों में मौजूद है। एक और खबर की बात करते हैं। हाजी अली में मुंबई में महिलाओं के प्रवेश का रास्ता साफ हो चुका है। दरगाह ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो महिलाओं और पुरुषों को बराबरी में यकीन रखता है और अब महिलाएँ अंदर तक जा सकेंगी जियारत करने के लिए। एक और खबर द हिंदू ने लिखा है, जो कि सारे ही अखबारों में कल इसकी खूब चर्चा हुई और आज सारे अखबारों की सुर्खियों में है। द हिंदू ने लिखा है, टाटा सन्स ने साइरस मिस्त्री को किनारे किया। इकोनॉमिक टाइम्स ने इस पर लिखा है कि मिस्त्री एंड्स मिस्ट्री बिगिंस। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अखबार ने 24 नवंबर 2011 का जो अपना एडिशन था उसके पहले पन्ने की तस्वीर भी छापी, उस पर लिखा था मिस्ट्री एंड्स एंड मिस्त्री बिगिंस, यानी कि मिस्त्री का कार्यकाल शुरू हो रहा था साइरस मिस्त्री का, और जो सस्पेंस बना हुआ था कि कौन बनेगा टाटा का अगला चेयरमैन, वो उसकी मिस्ट्री खत्म हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने और तमाम अखबारों ने जैसे लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर लिखा है कि 87 लोगों के 85,000 करोड़ रुपए सरकारी बैंकों में बकाया है, लोन नहीं चुकाया है लोगों ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आरबीआई से कहा है कि क्यों ना इन लोगों के नाम सार्वजनिक कर दिए जाए, और आरबीआई ने हालांकि इन नामों को गोपनीय रखने की अपील की है अदालत से, और कहा है कि अगर सार्वजनिक कर दिया जाएगा तो बैंकों को इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है।
बहुत शुक्रिया हरिता आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब एक खास रिपोर्ट। झारखंड में हजारीबाग जिले के बबनवे गांव के मूल निवासी कर्नल विनय कुमार ने सिस्टम के मुंह भले ही मोड़ा है, लेकिन पहाड़ों गांवों के लोगों की सेवा करने का हौसला उनमें कम नहीं हुआ है। उन्होंने झरने जलप्रपात के बहते पानी को बिना बिजली तेल के खेतों पहाड़ों में पहुंचाने के लिए प्रकृति जल ऊर्जा पंप बनाने में सफलता पाई है। सुनिए नीरज सिन्हा की ये खास रिपोर्ट।
हवा है पूरा निकलो दे।
हाँ।
हवा पूरा निकल गया।
हाँ।
अच्छा, चाल चलो दे।
मतलब ये अब जैसे खुलो और बंद हुआ
ठीक चल रहा है
तो कर से चलो।
यही है कर्नल विनय, कृषि वैज्ञानिक और इंजीनियर, कई भाषा के जानकार, पर गांव जवार की बोली से इन्हें प्यार है। हम जब उनसे मिलने पहुंचे तो वे खेतों में जूझ रहे थे, धूप कड़ी थी। कहा फौज का आदमी हूँ, फर्क नहीं पड़ता। झारखंड के पठारी इलाकों में पानी संकट को देखते हुए उन्होंने एक साल तक प्रकृति जल ऊर्जा पंप पर काम किया और सफलता पाई। कई नामी रिसर्च संस्थानों ने इस काम के लिए उन्हें प्रशंसा पत्र दिए हैं। इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने उड़ीसा में भी काम किया है। वे बताने लगे कि हजारीबाग में पहाड़ पर बसे एक आदिवासी गांव कोती टोला में झरने के पानी को जब ऊपर पहुंचाया तो ग्रामीणों की खुशियां देखकर उन्हें लगा गांव लौटने का सपना जरूर साकार होगा। इसके बाद झारखंड में 10 जगहों पर किसान खुशहाली योजना के तहत यह पंप लगाया, पर बाद में योजना रफ्तार नहीं पकड़ सकी। इस सवाल पर कर्नल विनय,
नहीं यहाँ पे क्या है ना कि सब लोग बोलते हैं कि सिस्टम के साथ काम कीजिए। मैं ऊपर तक गया हूँ, कुछ ऑफिसरों ने सपोर्ट भी किया, पर वो बोलते सिस्टम के साथ काम कीजिए। मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं एक इनोवेटर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, इंजीनियर हूँ, कृषि वैज्ञानिक हूँ, मगर ये झारखंड में या बिहार में जो सिस्टम के साथ काम होता है उस सिस्टम के साथ मैं काम नहीं कर सकता। प्रॉब्लम है कि हम प्रोफेशनल हैं, हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। यदि मैं किसी डिप्टी कमिश्नर के पास जाता हूँ तो वो सोचता है कि ये पैसा कमाने के लिए आया हुआ है। ही ट्रीट्स मी लाइक ए कॉन्ट्रैक्टर, ही ट्रीट्स मी लाइक ए सप्लायर।
राजू राम खेतीहर मजदूर हैं। उनका कहना था कि 6 इंच के ऊर्जा पंप के जरिए 15 से 20 एकड़ जमीन की पटवन सालों भर की जा सकती है।
ये अद्भुत दिमाग है, इसको बारे में आदमी सोचे कहे कि हाँ अद्भुत दिमाग है। क्या कि इसमें तेल नहीं लगता है, नहीं इसमें डीजल लगता है, अरे तो पानी चल जाता है, और किसान चाहे तो इसमें फायदा ही फायदा है। कि थोड़ा इसमें सोचना है कि मतलब इसको किस तरह से किया जाए।
विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के प्राध्यापक सुबोध सिंह सियोगित गाँव से आते हैं तथा सामाजिक व कृषि कार्यों से सरोकार रखते हैं। उनकी चिंता है
बिजली चाहिए न बैटरी चाहिए, हमको झारखंड में बिजली और बैटरी के बगैर अगर झरने के पानी को कोई खेत तक पहुंचा रहा है तो मान के चलिए कि अपने आप में मेजर साहब का यह प्रयास अद्वितीय है। जरूरत है सरकार संरक्षण दे, समाज सेवी संस्थाएं संरक्षण दे, या थोड़ा बहुत हम और आप जैसे सामाजिक लोग हैं वो संरक्षण दे, ताकि झारखंड के लोग आज जो पलायित हो रहे हैं तो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि उनके खेतों में पानी नहीं।
इन दिनों विनय कुमार रोटरी फाउंडेशन से जुड़कर आंखों के मरीजों की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए फाउंडेशन के साथ मिलकर बाकायदा अस्पताल की स्थापना की है। इसके अलावा खाली पड़े अपने पुस्तैनी मकान में गाँव की लड़कियों के लिए सिलाई प्रशिक्षण सेंटर खुलवाया है। इन कामों में उनकी पत्नी सरोज हर वक्त मदद करती हैं। मरीजों के लिए खाना पकाने, कपड़े और बर्तन धोने तक का काम ये लोग खुद करते हैं। आंखों का ऑपरेशन कराने आई गांव की एक महिला पार्वती की जुबानी,
बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत ही आराम, सेवा सुखार, खाना पीना को प्रेम वाला खाना, सेवा करना रात भर दियो बेकती खड़े हथुन सेवा करल थुन सदर अस्पताल ले, यहाँ बहुत अच्छा लगलो और बहुत सेवा भेलो।
जबकि कर्नल विनय की पत्नी सरोज बताती है यह सब करना अच्छा लगता है।
हमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा, एक जो करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो और कहीं नहीं मिल सकता। इसीलिए तो इनके जो बैच के जितने इनके अफसर हैं, इनके कलीग्स सारे कोई पूना में, सारे मेट्रोज में हैं, बट इनका शुरू से था कि हमको वापस हजारीबाग आना है। हालांकि मेरे बच्चे थोड़े खुश नहीं थे क्योंकि यहाँ पर रहे नहीं कभी वो, तो लेकिन इनका शुरू से था कि हम यहीं पर रहेंगे क्योंकि इनको अपने रूट से जुड़ के रहना बहुत पसंद था।
कर्नल विनय की नज़रें देश की सीमा पर भी होती है। बेशक मुश्किलों के बीच सेना के इस रिटायर अफसर के पास वतन और गांव के लिए दिल लगी दिलेरी कायम है। नीरज सिन्हा, बीबीसी हजारीबाग।
और अब प्रमुख समाचार सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा शहर में कल रात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर चरमपंथियों ने हमला किया जिसमें ट्रेनिंग ले रहे 50 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई है। इस हमले में शामिल तीनों हमलावरों की भी मौत हो गई है। बलूचिस्तान के गृहमंत्री सरफराज बुगटी ने बताया कि ये चरमपंथी आत्मघाती हमलावर थे और प्रतिबंधित गुट लश्कर ए जांगवी से संबंधित थे। वेनेजुएला की डगमगाती अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संकट के बीच सोशलिस्ट सरकार और विपक्ष के बीच रविवार को बातचीत के लिए रजामंदी बनी। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली देवाशीष कुमार ने। آپ سے اگلی ملاقات ہوگی ابھی سے ٹھیک ایک گھنٹے بعد کارکرم وشو بھارتی میں، لیکن پل پل بدلتی خبروں کے لیے آپ چوبیسوں گھنٹے آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbchindi.com پر۔ اور اب اقبال احمد کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ دیجیے اجازت، نمسکار۔